धन्यवाद आप सभी भक्तों का, माताओं का, भक्तों का, बालकों का। इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम, सुस्वागतम। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें, कृपा करके इन बातों को ध्यान रखिए। तो तभी संभव होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे, और आशा कीजिए कि इनको जीवन भर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें जीवन में टकरा जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है। वो टर्निंग पॉइंट कई बार करोड़पति की जब बात आती है तो अच्छा लगता है, कौन बनेगा करोड़पति, और जब करोड़पति बन जाते हैं तो पूछा जाता है आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। अब वो अपने जीवन के टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करता है, ऐसे ऐसे हम यहाँ तक पहुँच गए, इसके वाइस वर्सा हो जाए कौन बनेगा रोड, और उसका टर्निंग पॉइंट पूछा जाए तो एक्सप्लेन करना भारी पड़ जाएगा। खैर, हम यहाँ रियल करोड़पति की बात करेंगे, रियल करोड़पति से भी आगे की बात करेंगे, क्योंकि करोड़पति होना मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति होना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद पावर। पावर मीन्स शक्ति। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ powers. One is called power of knowledge, power of money, which is sweeter than honey. Similarly, there are so many powers. Power of people. ऐसे ही power of devotee, एक भक्ति की शक्ति क्या होती है। ये सब चीज़ों की तुलना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर हम कभी इस पावर को प्राप्त कर पाए तो आप इस दिन को याद करोगे कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा दिन था जो हमें टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और हम इस पावर्स को प्राप्त कर पाए। वैसे भी ये शिक्षा इतनी ज़रूरी है, हालांकि संसार की कोई भी शिक्षा जरूरी होती है। बच्चे को बचपन के कारण शिक्षा इतना जरूरी नहीं समझता, वो खेल कूद को जरूरी समझता है, लेकिन शिक्षा बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि बुढ़ापे में काम आती है, जीवन भर काम आती है। और उस शिक्षा के लिए वो कितना गधा मजूरी करना पड़ता है, उसको 20-25-30 साल उसको बहुत बामशक्कत काम करना पड़ता है, न चाहते हुए जबरदस्ती उठ के जाता है, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे कॉलेज में व्यतीत करते हुए वापस आता है। वो शिक्षा के लिए जब इतना कर सकता है कोई, तो ये शिक्षा तो इतनी जरूरी है कि जीते जी भी काम आती है और मरने के बाद भी काम आएगी। तो इस शिक्षा के लिए कितना एंडेवर करना चाहिए। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि अलग अलग तरह के प्लेयर्स होते हैं, 20-20 के प्लेयर्स होते हैं, T20 वन डे के प्लेयर्स होते हैं, 50 ओवर्स के लिए 50-50, और फिर टेस्ट प्लेयर्स होते हैं। टेस्ट प्लेयर को 20-20 खेलना थोड़ा भारी पड़ता है, कुछ लोगों को 20-20 अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वन डे अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है। मैं वैसे टेस्ट प्लेयर हूँ, मेरे को हाँ बहुत संक्षेप में सारी चीज़ें देना इतना सहज नहीं फील करता, क्योंकि चीज़ ही इतनी बड़ी है कि छोटी जगह में आती नहीं है। जो शिक्षा जीवन के बाद भी काम आने वाली हो, वो शिक्षा इतने से में कैसे दे दिया जाए। कोई कहे बस मेरे को 5 मिनट में दे दो, तो कैसे दे सकते हैं। उसके लिए दूसरे प्लेयर्स हैं आपको थोड़ा नज़दीक लाने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा अलग किस्म का व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे ऊपर भी भक्तों का बहुत प्रेशर रहता है, मेरे चैंपियन लोग हैं ये सभी, प्रभु जी आ गए अभी तो ये सब मेरे को प्रेशर देते रहते हैं, प्रभु जी बॉल को खाली मत जाने दो, मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर आने में थोड़ी भूमिका तो लगती है भाई, आदमी उस हिसाब से मन बना करके चलता है। आशा करता हूँ कि आप लोग उसी हिसाब से मन बना करके थोड़ा चलेंगे। ये बात कितनी आवश्यक है तो इसको समझने के लिए थोड़ा तो एंडेवर करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं, रात के 8-9 बजे तक आपको बैठना है, फिर प्रसाद के साथ आपको वापस भेज दिया जाएगा, इसलिए धैर्य के साथ बैठिएगा। यहाँ नहीं बैठेंगे, कहीं और बैठना पड़ेगा, बेहतर है यहीं बैठ जाएं। जैसे हाँ पहले भी मैं कह चुका हूँ, कुछ नए लोग हैं शायद, पहले लोग भी कई बार भूल जाते हैं, रिपीटेशन इज कॉल्ड मदर ऑफ लर्निंग, रिपीटेशन भी बड़ी जरूरी होती है। कुछ लोग आगे आ जाइए, जिससे उधर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग आगे आ जाओ, काफी जगह है यहाँ, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, पीछे वाले लोग उधर से जो नए लोग आते हैं बैठ पाएंगे, प्लीज आ जाओ। एक रास्ता है जिसमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए ध्यान से सुने, जैसे कोई व्यक्ति गलती करता है और गलती करने के बाद मानता नहीं, उसको शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं? कर दिया, क्या कर लेगा वो, स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते, उनको क्या परिभाषित किया, कौन होते हैं वो, शैतान। जो गलती करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, अपराध दो लोगों में झगड़ा होगा तो किसी न किसी गलती से ही होगा ना, किसी एक की तो गलती होगी, और एक व्यक्ति अगर स्वीकार कर ले तो झगड़ा समाप्त तो हो जाएगा कि नहीं। बड़े बड़े विश्व युद्ध जो है गलती ना स्वीकार करने के कारण हो जाते हैं, छोटी सी गलती में हजारों लोग मारे जाते हैं। तो क्या चीज सस्ता है, अच्छा है, गलती स्वीकार करना या अड़े रहना? स्वीकार कर लेना। बहुत बड़ा लॉस हो तो गलती वैसे भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति लॉस को नहीं देख पाता, अहंकार को देख करके चलता है, मैं क्यों झुकूं, ठीक है गलती होगी लेकिन देखा थोड़ी है किसी ने, तो कोई प्रूफ नहीं है तो क्या किया जाए, मैं अड़ा रहूंगा। तो उसको क्या कहते हैं, शैतान। किसी से कोई गलती हो जाए और वो उसे स्वीकार कर ले, ठीक है बाबा मेरे से गलती हो गई, उसको इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन क्षमा नहीं मांगेगा वो, इतना बोलेगा हाँ हो गई गलती, अब क्या जान लेगा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती कर दिया। फिर भी उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहा जिस तरह से स्वीकार करना चाहिए, जबरदस्ती कोर्ट उसके ऊपर दंड आरोपित करता है, गलती मान लेने के बाद, प्रूव होने के बाद, फिर भी मान लेने के कारण उसको क्या कहा गया है, इंसान। और कोई गलती करे, उसकी गलती है वास्तव में, और वो स्वीकार करने के साथ क्षमा मांग ले, क्या कर ले, क्षमा मांग ले, तो फिर कैसा एनवायरनमेंट होगा, कितना अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति उसको गले लगा ले, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, दूसरा व्यक्ति खुद ही ऐसे कहेगा उसको। तो अगर कोई क्षमा मांग लेता है तो उसको इंसान नहीं, शैतान नहीं, ईमानदार कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमानदार। इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही शोइंग हिज ऑनेस्टी फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हर्ट। गलती हो गई बाबा। वो क्या कहलाता है? ईमानदार। और गलती ना की हो, गलती ना की हो और फिर भी उस गलती को स्वीकार कर ले, और स्वीकार ही नहीं क्षमा मांग ले, क्या कर ले उसको क्या कहते हैं? पहला गलती की नहीं माना शैतान, दूसरा इंसान गलती की दादागिरी से मान ली लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, तीसरा गलती की मान लिया प्रायश्चित के रूप में क्षमा भी मांग लिया, क्या कहलाता है वो? ईमानदार। गलती नहीं की फिर भी मान ली, और मान ली मतलब दबाव में नहीं, हृदय से मानी है, इसलिए वो क्या मांग रहा है? क्षमा मांग रहा है। इज कॉल्ड हस्बैंड। कुछ लोग रुक रुक के हंस रहे हैं क्योंकि माता यहीं बैठे हैं ना उनके कई बार। और अनदर सेंस ही शी इज कॉल्ड वाइफ। माताएं उंगली उठा सकती है ना, बिना गलती के माताओं को भी कई बार इस प्रकार से मानना पड़ता है, इसलिए वाइफ भी कहलाती है वो और हस्बैंड भी कहलाता है। और उसको महान नहीं कहते, संसारी भाषा में दोनों ही जगह मजबूरी का नाम है ये दोनों, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को ही मजबूरी में इस दौर से गुजरना पड़ता है। और अगर कोई ऐसे चक्कर में ना फंसा हो और ऐसा चरित्रवान बन जाए तो उसको भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भक्त कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको इसलिए सुनाया कि या तो आप स्वेच्छा से भक्त बन जाओ और बन करके ऐसे चरित्रवान बन जाओ, नहीं तो बाई डिफॉल्ट आपको ऐसा मजबूरी में बनना पड़ेगा। क्या बेहतर है? गांधी जी मजबूरी का नाम हस्बैंड वाइफ और गांधी जी, और स्वेच्छा का नाम भक्त। स्वेच्छा का नाम क्या है? अगर हम अपनी इच्छा से दुरुपयोग ना करते हुए इस इच्छा का सदुपयोग करते हुए अगर भक्त बन जाते हैं तो भक्त का ऐसा चरित्र होता है जो गलती नहीं भी होती है फिर भी हृदय से गलती को स्वीकार करता है और क्षमा मांग लेता है, ऐसा भगवान को कितना प्यारा लगेगा। मजबूरी में मानना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन स्वेच्छा से मान करके ऐसा जीवन जी रहा वो कितना प्यारा होगा। वो कौन सा भक्त है? बहुत बड़ा भक्त है। भक्त कई तरह के होते हैं, तो हम भक्तों की परिभाषा थोड़ा सा समझते हैं कितने तरह के भक्त होते हैं और हमें कैसा बनना है। हमें से सब तो नहीं बन पाएंगे, कोई कोई भी बन जाए या हम उतने नहीं थोड़े बहुत भी बन जाए तो भी भगवान इतने दया में हैं कि अपनी भक्ति का रास्ता किसी के लिए भी बंद नहीं करते। किसी के लिए मतलब जिसमें चर और अचर प्राणी सारे आ जाते हैं, ये भगवान की दया है। भगवान कहते हैं रामायण में पुरुष नपुंसक नारी वा, पुरुष नपुंसक, ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप दोहरा पाएंगे, पुरुष नपुंसक नारी वा, पुरुष नपुंसक जीव चराचर कोय, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी, सर्व भाव भजी कपट तजी, सोहे परम प्रिय मोह, सोहे परम प्रिय मोह। बोले कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आ सकता है। कौन आ सकता है? पुरुष आ सकता है, नपुंसक आ सकता है, अर्थात कोई क्लीव है। नपुंसक नारी स्त्री भी आ सकती है, यहां तक कि जीवों में कोई भी चर या अचर, चलने फिरने वाले भी और ना चलने फिरने वाले, वृक्ष आदि भी आ सकते, कोई भी आए। लेकिन अगर मेरा भजन करता है, सर्व भाव भजी कपट तजी, कपट को छोड़ करके अगर मेरा भजन करता है, सो ही परम प्रिय मोहे, वो मुझे बड़ा प्यारा होता है। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। तो इस स्तर तक कौन पहुंच पाता है जो भगवान का अत्यंत प्यारा बन जाए? ही इज कॉल्ड परम भक्त। कौन सा भक्त? परम भक्त। बाकी भी भक्त है, वो भी भगवान को अच्छे। गीता में भगवान ने कहा है चार प्रकार के भक्त होते हैं। तो अभी हम थोड़ी भक्त की बात करेंगे, हमें अगर ऐसा बनना है तो। जो नहीं बनना चाहता वो सुन के भी क्या लाभ, जा सकता है। थोड़ा बहुत भी बनना चाहता है तो बैठ जाओ, नहीं भी बनना तो मत बनना, कम से कम सुन लो, फिर भी फायदे का लगे बाद में तो बनने का सोच लेना, नहीं लगता मत सोचना भाई, कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ। आगे हाँ बैठोगे तो कुछ पाओगे, सही बात। फालतू में बैठने पर भी कई बार बहुत कुछ मिल जाता है, बैठना चाहिए। नई नई दुकानदार दुकान खोलता है, बैठ जाओ बस थड़े पर, कोई ना कोई तो आफत का मारा आ ही जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी चीज को लेकर के, गलत सलत भी लेकर के चल पड़ोगे ना, आपके फॉलोअर वहां भी मिल जाएंगे आपको। खैर कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही सकता है। आगे बढ़ो, कौन ऑपरेट कर रहा है? गीता में भगवान सातवें अध्याय के 16वें श्लोक में बता रहे हैं, आप सब लोग पढ़ो इसको मेरे पीछे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? ओ बेस्ट अमंग द भरतास, भारत वंशी हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं अर्जुन। फोर काइंड्स ऑफ पायस मैन बिगिन टू रेंडर डिवोशन सर्विस ऑन टू मी, चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। पहला द डिस्ट्रेस्ड, सेकंड द डिजायर ऑफ वेल्थ, थर्ड द इंक्विजिटिव, फोर्थ एंड ही हु इज सर्चिंग फॉर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। ये चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त, अर्थात जो आर्त है मतलब रो रहा है, दुखी है। अर्थार्थी, जो अर्थ देकर के कुछ अर्थी चाहता है। विद्या अर्थी, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। तो अर्थ देकर के कुछ चाहता है, ही इज कॉल्ड अर्थार्थी। जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। ज्ञानी मतलब जो जानता है। ऐसे चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आगे बढ़ो। आर्त मतलब डिस्ट्रेस्ड, जो दुखों से पीड़ित है संसार में। जैसे एक हाथी था, ये गजेंद्र नाम था इनका, और त्रिकूट पर्वत पर जो देवलोक में एक प्रकार से माना जाता है, वहां पर ये अपने पूरे परिवार के साथ जंगल के राजा की तरह विचरण करते थे। और अचानक से एक सरोवर में जब चले गए, वहाँ इनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ और युद्ध में सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए। पानी की ताकत पानी के जीव की पानी के अंदर बढ़ जाती है, मगरमच्छ की ताकत बढ़ती गई, इनकी ताकत कम हो गई। अंत में इनको कोई सहारा नहीं दिखा तो इन्होंने अंत में भगवान को ही याद किया। हे कृष्ण, हे ईश्वर, कोई है संसार में कोई ऐसा परमेश्वर है जो मेरी रक्षा करे, मैं उसकी शरण लेता हूँ। जैसे ही ऐसा पुकारा, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के दौड़ करके चले आए। और उसने ज्यादा कुछ दिया नहीं था, केवल एक फूल चढ़ाया था बस। कई बार हम सोचते ना, फूल चढ़ाने से क्या मिलता है? फूल चढ़ाने से हम मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं, अगर भाव से फूल चढ़ाएं तो, रो करके फूल चढ़ाएं तो। आर्त व्यक्ति भगवान को जब फूल चढ़ाता है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। कंडीशन है, लेकिन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। किसकी शरण में आना चाहिए? मेरी ही शरण में आना चाहिए। आर्त व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वो संसार के दुखों का समाधान चाहता है यहीं रहते हुए। जबकि संसार का नाम भगवान ने लिखा है दुख आलय, यहां दुखी मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति औषधालय में जाए और कहे एक किलो टमाटर देना, बोले बेवकूफ, यहाँ औषधि मिलती है, टमाटर वाले के पास जाकर के टमाटर मांगो। नहीं, मेरे को यहीं से चाहिए। तो दुखालय में तो दुखी मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं तुम यहां से बाहर आ जाओ, लेकिन हम बाहर नहीं जाना चाहते, यहीं पर मनमाने ढंग से दुखों से बचने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए भगवान का भजन करते हैं, तब भगवान उनके दुखों का हरण अवश्य करते हैं। परीक्षित महाराज की माँ उत्तरा थी, जिसको कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसने अर्जुन आदि की किसी की शरण नहीं ली, सीधे कृष्ण के पास भागी और बोले मेरी रक्षा कर। आर्त व्यक्ति का भगवान सदा ही रक्षा करते हैं, वो भी एक भक्त है। दूसरा है जिज्ञासु, जो कुछ जानना चाहता है। जैसे महाराज परीक्षित को जब श्राप लग गया कि 7 दिन बाद तुम्हें राजा तक्षक के द्वारा, सर्प के द्वारा तुम्हें राजा काटा जाएगा, तो महाराज परीक्षित चिंतित हो गए, मुझे क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे साधु संतों को बुला के गंगा किनारे जिज्ञासाएं की, जानने के इच्छुक हुए। तो महा दैव कृपा से सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने उनको सारी शिक्षा दिया, समझ आया और भगवान की शरण लिया। तो जिज्ञासु भी जो जानने के इच्छुक हैं, वो हम प्राय सभी हैं, भटकते रहते इधर उधर, तो अंत में भगवान की शरण में जब आते हैं तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। और इनको भगवान ने अपने धाम में बुलाया। तीसरा है अर्थार्थी, जो कुछ देकर के कुछ पाना चाहता है। ध्रुव महाराज इसके उदाहरण हैं। उनके पिता ने उनको गोद में लेने से इनकार कर दिया तो एकदम लाल हो गए। वो क्षत्रिय बालक थे, 5 साल के मात्र, और एकदम क्रोध में आकर के माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा, बेटा संसार में कोई नहीं है किसी का, भगवान नारायण ही सब कुछ दे सकते हैं। तुम्हारे बाप से, बाप के जो बाप के बाप है, उनसे भी बड़ा शासन तुम्हें प्राप्त हो सकता है, राज्य मिल सकता है। तो ध्रुव महाराज चले गए। ये वृंदावन का सीन है। वृंदावन में ध्रुव महाराज ने आराधना किया, भक्ति किया, और भक्ति के प्रताप से 5 साल के बच्चे के लिए भगवान को आना पड़ा, और भगवान ने आकर के उनको ध्रुव लोक दे दिया, ये ले लो भाई। लेकिन ध्रुव जी बोले, ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने फूटे हुए कांच मांग लिए, सामने मणि थी, मणि को छोड़ करके मैंने फूटे हुए कांच मांग लिए। बाद में उनको पछतावा हुआ। और इससे श्रेष्ठ भक्त कौन होते हैं? चौथे किस्म के होते हैं, जिनको ज्ञानी कहते हैं। One who knows things as they आर जो जानते हैं कि क्या तथ्य है, जो वस्तु हमें दिख रही है वास्तव में वो है क्या, उसको जानते हैं, उसके अनुरूप उसके साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो उनको दिखता है कि ये जड़ वस्तु है तो जड़ ही समझते हैं, ये चेतन वस्तु है तो उसको चेतन समझते हैं, उनको समझ में आता है कि ये दुखदायक है तो उसको सुखदायक नहीं समझते, उसको दुखदायक ही समझते हैं। जो सुखदायक है उनको समझ आता है ये सुखदायक है तो भाई मेरे को इसके पीछे भागना चाहिए। जो पवित्र है वो समझते हैं ये पवित्र है, वो अपवित्र को पवित्र नहीं मानते, और जो अपवित्र है उसको पवित्र नहीं मानते, जो पवित्र है उसको अपवित्र नहीं मानते। जो अपने हैं उनको अपना समझते हैं, जो पराये हैं उनको पराया समझते हैं, अपनों को पराया और पराये को अपना समझने की भूल नहीं करते। ये कौन कहलाते हैं? ज्ञानी कहलाते हैं। अब इस दृष्टिकोण पे जब हम आते हैं तो हमको तो ऐसा लगता है हम ही परम ज्ञानी, दूसरे लोग ऐसा समझते होंगे, हम तो नहीं समझते। नहीं, हम घोर अज्ञानी हैं। जैसे ये शरीर है, हम एक दूसरे के शरीर को देखते हैं, तो ये शरीर को गीता में कपड़े की तरह कहा है, तो कपड़ा चेतन वस्तु है या डेड वस्तु है? डेड है। तो ये शरीर हमारा डेड है या लाइव है? डेड है। शरीर को कपड़े की तरह कहा है और कपड़ा कैसा है? डेड। तो हमारा शरीर कैसा हुआ? डेड। हमें लगता कैसा है? इसलिए बोल रहे थे लाइव है। और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है, लेकिन हमें आत्मा कैसी लगती है? डेड। कहाँ है आत्मा? कैन यू इमेजिन? हम ज्ञानी हैं क्या? नहीं। हमारा शरीर का एक एक वस्तु अगर खोल के रख दी जाए, चमड़ी है चमड़ी निकाल के रख दी जाए सामने, हड्डियां हैं हड्डी निकाल के रख दी जाए, एक आधी रख दो सारी नहीं, थूक है उसको एक प्लेट में रख दो, कफ है उसको रख दो, ब्लड है उसको रख दो, शरीर में से निकालने की बात कर रहा हूं, मैं कहीं बाहर से लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मल मूत्र है उसको रख दो अपने शरीर में से, और फिर अरे बाकी चीजें छोड़ो यार, जो बाल हैं उनको ही थोड़ा सा कट करके और उसको ही कटोरी में रख दो बस। कैन यू टच दैट हेयर? व्हाट टू स्पीक अबाउट अदर थिंग्स? क्या हम उस बाल को स्पर्श करने के लिए इच्छुक होंगे? और यहां खूब स्पर्श करते हैं, अलग अलग सुगंधित तेल से महकाते हैं, और उसको जस्ट यहां से जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस में यहां ला करके रख दो बस। वुड यू लाइक टू टच इट? और एनीथिंग विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम अवर ओन बॉडी, इज दैट टचेबल? नॉट एट ऑल। सो इफ द थिंग विच इज नॉट टचेबल इज दैट प्योर? क्या वो पवित्र है? नहीं। फिर भी हम गले लगना चाहते। तुम अपवित्र को क्या समझ रहे? पवित्र। और पवित्र को क्या समझ रहे? अपवित्र। ये हमारी समस्या है। जो नदी है गंगा आदि है पवित्र है, उनको हम थूकना चाहते हैं, वहां गंदगी फैलाना चाहते हैं, वहां अपना अंधा करके कच्चा वहीं छोड़ना चाहते हैं, चारों तरफ पॉल्यूशन फैलाने के लिए तत्पर है। आपके देहरादून की नदियों का क्या हाल कर दिया हमने, क्या बताना है? जो पवित्र है वो हमें कैसा नजर आता है? अपवित्र। और जो अपवित्र है वो कैसा नजर आता है? पवित्र नजर आता है। ज्ञानी हैं हम? घोर अज्ञानी हैं।
ज्ञानी नहीं।
लेकिन जब कभी अगर हम भक्त बन गए, तो भक्तों में आगे बढ़ते गए, आर्त बन पाए, आर्त से ऊपर अर्थार्थी बन पाए, अर्थार्थी से ऊपर जिज्ञासु बन पाए, जिज्ञासु से ऊपर ज्ञानी बन पाए भगवान। और उस स्थिति में क्या देखते हैं, जो स्थिति जैसी है हमें वैसी ही दिखती है। मीन्स वी आर नाउ आउट ऑफ इल्यूजन, हम भ्रम से बाहर हैं, अब हम भ्रम में नहीं। जब भ्रम से बाहर हैं तब हम पागल नहीं कहलाएंगे, उससे पहले हम क्या कहलाएंगे, पागल कहलाएंगे। और किसी को पागल बोल के देखो, वो कहेगा तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा खानदान पागल। मानने के लिए तैयार नहीं है कि तेरी पूरी हेरिटेज पागल है। वैसे मान लेगा कि हाँ हमारे पूर्वज बंदर थे, डार्विन थ्योरी में स्वीकार कर लेगा, वैसे नहीं मानेगा, प्रैक्टिकलिटी में नहीं मानेगा, थ्योरेटिकली में मानेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें भगवान समझा रहे हैं कि भाई तुम ऐसे भक्त बनो। तो ज्ञानी भक्त कैसे बनते हैं, फिर कैसे बनेंगे ज्ञानी भक्त? हाँ, ये करेक्टरिस्टिक्स है, पवित्र को पवित्र माने, अपवित्र को अपवित्र माने, लाइव को लाइव माने, डेड को डेड माने, अपनों को अपना माने, परायों को पराया माने। अब संसार में जिनको हम अपना मानते हैं, क्या वो हमारे साथ आगे आते हैं? संसार में कोई साथ नहीं आता। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। जब मुसाफिर खाना उसको कहते हैं जहां धर्मशाला में चलते चलते यात्रा करते करते कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, क्या वो अपने हो गए? नहीं, थोड़ी देर के लिए मिले फिर बिछुड़ जाएंगे। लेकिन उनको कोई अपना मान ले तो बुद्धिमानी है क्या? नहीं, हम सब अपना मान लेते हैं। समझ रहे? हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अवश्य मानते हैं। कहा है ना, सीता राम भजो, राधे श्याम भजो, राधे श्याम भजो। क्यों भजना है? जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। आप किसी मुसाफिर खाने में, होटल में, धर्मशाला में अगर जाएंगे तो पूछे कितने दिन की बुकिंग लेनी है साहब, आप कहेंगे इतने दिन की बुकिंग। जब तक आपकी पॉकेट में आप अलाउ करेंगे उतना दिन का चेकआउट टाइम आपका ये रहेगा। तो आपको छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, मुसाफिर खाना। अब वहां मिलने वाले जो लोग हैं अपने हैं क्या? नहीं। तो आचार्य समझा रहे हैं इस संसार से हमें जाना है कि नहीं जाना है। चेकआउट टाइम आ जाएगा, हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, सीता राम भजो, राधे श्याम भजो, सीता राधे श्याम, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। सत्य है कि नहीं? अब सीताराम राधे श्याम क्यों भजो? क्योंकि वो अपने हैं, इसलिए उनको बुलाओ। कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जिसने धारा जन्म उसने होना। जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना, जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना। इसलिए सीता राम भजो राधे श्याम भजो, सीता राम भजो राधे श्याम भजो, सीता राम भजो। जग से जाना भाइयो दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना भाइयो दुनिया मुसाफिर खाना। अरे दूसरे तो बाहर की चीजें, हमारा ये शरीर भी हमारे साथ ये भी शमशान की अमानत है, शमशान में जाते ही हमें देना पड़ेगा, नहीं ले जा सकते साथ, और हम इसे अपना समझते, हमारा नहीं है। ऐसा क्यों समझते हैं? अज्ञानता के कारण। ये सब संसार में बाकी लोग तो जब शरीर भी मरघट तक साथ दे रहा है तो बाकी मरघट से आगे थोड़ी आने वाले हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने बस मरघट तक ही जाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में दुनिया में कोई किसी का नहीं भाई। लेकिन हम अज्ञानता में इस दुनिया को अपना घर मान करके यहाँ परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन। अरे झोपड़ी बना करके समय निकालो, अपनी तैयारी करो आगे जाने की। लेकिन ऐसा कोई ज्ञानी कर सकता है? हम सभी अज्ञानी हैं। लेकिन ऐसे बनेंगे कब, ऐसे हैं कि नहीं, ये समझ में आ गया? पहले तो हम सोच रहे थे हम तो ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। अब हमें समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, वो भी क्लास में ही बना रहेगा, एक क्लास से बाहर निकलते ही एकदम बाष्पीकरण हो जाएगा इसका, एवेपोरेशन हो जाएगा, उस समय समझना और कठिन हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा है। कंटिन्यू रख पाए तो कोई बहुत बुद्धिजीवी होगा, बार बार हैमरिंग करने की जरूरत है उसको। यहाँ से एक शेप मिलती है, पहले तो थोड़ा लोहे को गर्म किया जाता है, फिर थोड़ा हथौड़ा मार के थोड़ा शेप दिया जाता है, बाहर जाते वहाँ अलग गर्माहट मिलती है, वहाँ भी हथौड़े पड़ते हैं, वहाँ से फिर पुरानी शेप में लौट के आते हैं। ये खूब जद्दोजहद होती है, पूरा जीवन निकल जाता है। एनीवे उपाय क्या है ज्ञानी? ऐसा ज्ञानी भक्त बनने के लिए एक ही उपाय है कि हमारे पास ज्ञान आ जाए तो हम क्या बन जाएंगे? ज्ञानी। ज्ञान नहीं है तो हम कैसे हैं? अज्ञानी। तो ज्ञान कैसे आएगा?
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई।
जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग महा मतलब जहां सत्य का संग कराया जाता हो उसको क्या कहते हैं? सत्संग। जहां असत्य को सत्य के रूप में पेश किया जाता हो उसे असत्संग कहते हैं। Eventually you are going to get asat from there, जो सत्य नहीं है। जहां सत्य के बारे में बताया जाता हो, समझाया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? सत्संग। और जब सत्संग प्राप्त होता है तो विवेक जागृत हो जाएगा। क्या जागृत हो जाएगा? विवेक जागृत। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मतलब ज्ञान। और ये कब मिलता है? जब भगवान की अपार कृपा हो जाती। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब हमें कभी मनुष्य शरीर मिलता है, और विशेष कृपा होती है तब भक्तों की संगति मिलती है, और विशेष कृपा होती है तब भक्तों की संगति में ये चर्चा का सौभाग्य मिलता है। इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं होती। इसलिए जीवन निकल जाता है लेकिन कई बार ऐसी हरि चर्चा का सानिध्य नहीं मिल पाता। इसलिए हम अज्ञानी ही बने रहते हैं। अज्ञानी में भी अज्ञानता बढ़ती जाती है और अहंकारवश हम सोचते हैं कि अब हम अज्ञानता में प्रगति कर रहे हैं, अर्थात अज्ञानता का ज्ञान बढ़ गया है। उसको कहते पढ़े लिखे बेवकूफ। द सो कॉल्ड एजुकेशन सोसाइटीज दे आर गिविंग ओनली नेसियंस इन देयर लाइफ। अज्ञानता ही देते हैं वो, और अज्ञानता को पढ़ा लिखा होने के बाद वो समझते हैं कि अब हम कैसे बन गए? ज्ञानी बन गए। अर्थात एक अनपढ़ व्यक्ति अगर बच्चा कहीं पॉटी कर जाए, गंदगी कर जाए, तो उसको तुरंत वो गोबर की राख से उसको ढक देगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग डायपर पहनाए। जो प्रैक्टिकल नहीं है जीवन के लिए, ये पढ़े लिखे बेवकूफ कहलाते हैं। मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक सरदार का बालक कहता अपनी मम्मी, मम्मी उतारो ना, मेरे को सूसू लगी है, मेरे को जाना है। बाप कह रहा कर ले इसी में, डायपर पहनाया हुआ है। क्या बेवकूफ आदमी है। पढ़े लिखे बेवकूफ कहते हैं इसको। ऐसा हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं, हर क्षेत्र। इसलिए संसार में अज्ञानता की वृद्धि है, ज्ञान की वृद्धि नहीं। भक्तों की संगति में ही हमें ज्ञान की वृद्धि प्राप्त हो सकती है। और जब हम ज्ञान की वृद्धि करते हैं तो हम ऐसे भक्त बन जाते हैं। कैसे भक्त बन जाते हैं? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त वो होता है जो गलती ना हो फिर भी गलती को स्वीकार कर ले और माफी मांग ले। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे, जो कि मैं अजय हूं, मेरा एक नाम अजीत है, कोई मुझे जीत नहीं सकता, बोले ऐसे भक्त मुझे बांध देते हैं। मैं नहीं चाहता बंधना, कौन चाहेगा बंधना, लेकिन इनकी ये जो विशेष क्वालिटी है ये मेरे को एकदम से बांध देती है। मैं स्वराट हूं, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। मैं असमर्थ हूं, मेरे समान भी कोई नहीं, मुझसे ऊर्ध्व भी कोई नहीं। मैं सब माँ बापों के भी बाप हूं, मेरा कोई माई बाप नहीं, मेरी सत्ता है। लेकिन मैं ऐसे भक्तों की ऐसे पास में बन जाता हूं इनकी क्वालिटीज के कारण, इनकी विशेष गुण के कारण, जो इन्होंने दबाव में नहीं लाया अपने अंदर, स्वेच्छा से लाया है। ऐसा भक्त होता है। गो अहेड। ऐसे भक्त थे अम्बरीश महाराज। कौन थे? आप देख रहे हैं इस फोटो में कुछ, एक साधु दिखाई दे रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में फर्स्ट फेज में, और ऊपर से एक भूत जैसा उसमें से आग निकल रही है और सामने एक राजा हैं जो हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ये राजा जो है अम्बरीश महाराज है। कौन है? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के पास एक दिन ये दुर्वासा ऋषि आ गए। कौन आ गए? दुर्वासा ऋषि। और अम्बरीश महाराज ने इनका बड़ा वार्म वेलकमिंग किया, आइए महाराज। और द्वादशी का दिन था, एकादशी बीती थी, द्वादशी की शुरुआत हो रही थी। एकादशी का भक्त लोग व्रत करते हैं, भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। जैसे हम जहाँ काम करते हैं उसके कानूनों का पालन करते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भगवान के कानूनों का पालन करते हैं। तो भक्त तभी तो कहलाएंगे ना। तो भक्तों के लिए कानून है कि भाई आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज अन्न नहीं खाते। तो दुर्वासा ऋषि आए, ये योगी हैं, ये भक्त नहीं है। ऐसी तपस्या किया है इन्होंने कि केवल दूर्वा का घास और रस पीते हैं बस, इसलिए दुर्वासा नाम पड़ा इनका। बहुत कठोर तपस्या करने वाले दुर्वासा ऋषि ये आए। और ये राजा हैं अम्बरीश महाराज, सप्त द्वीपपति, सारों सातों द्वीपों के पूरी पृथ्वी के राजा हैं अम्बरीश महाराज। ऐसा इनका अतुलनीय वैभव है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे अम्बरीश महाराज इतिहास है। अव्यय लक्ष्मी थी इनके पास, जो कि इंद्र के पास भी नहीं है। अव्यय लक्ष्मी उसको कहते कि खर्च करो और खर्च ना हो, बढ़ती चली जाए, उसको अव्यय लक्ष्मी कहते। ऐसा धन था इनके पास, फिर भी संसार को सपना समझते थे, सोचते थे जाना है संसार छोड़कर। यहां तो चवन्नी अठन्नी आ जाती, उसी में खोपड़ी घुस जाती, कृष्ण को हमें दिमाग निकल जाता है। चवन्नी दास, अठन्नी दास, रुपया दास, लड्डू दास, पेड़ा दास, लेकिन कृष्ण दास नहीं बन पाते। ऐसा वैभवशाली जीवन होने पर भी महाराज अम्बरीश कैसे महान हैं, सोचते थे सपना है भाई, इसमें मन नहीं लगाना है। फिर ऐसे बिना मन लगाए फिर राज कैसे चलता था? बोले राज तो भय से चलता है, शासक के भय से शासन चलता है। इतने बड़े जब भगवान में युक्त हैं तो भगवान ने इनके शासन व्यवस्था के लिए सुदर्शन को छोड़ा हुआ है, सुदर्शन चक्र को। कहीं भी कोई नागरिक चोरी करेगा वहां सुदर्शन घूमने लग जाएगा। अब बताओ वो चोरी करेगा? इसे भय कहते हैं। सारा शासन बड़ा सुचारू रूप से चलता था। उसी समय अचानक से दुर्वासा ऋषि आते हैं और ये अतिथि ऋषि श्रेष्ठ आप हमारे साथ ही भोजन ग्रहण कीजिए। हमारी बोले हाँ राजन, हम भोजन ग्रहण अवश्य करेंगे, बस नदी में स्नान करके आते हैं। वो नदी में से स्नान करके आ रहे हैं। इधर इन्होंने देखा आज द्वादशी है, एकादशी का समय समाप्त हो रहा है, मुझे फास्ट ब्रेक करना है, परायण का समय हो गया है, थोड़ा बहुत अन्न खाना चाहिए। अगर कोई बिना अन्न खाए व्रत कर रहा है तो, कोई जल भी नहीं लिया अगर किसी ने तो उसको थोड़ा जल तो पीना चाहिए कम से कम, तब उसका फास्ट ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ तो पाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं इसको ब्रेक करता तो एकादशी का अपराध हो जाएगा, जो एकादशी भगवान को देने वाली है, माधव तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कौरी, ये भक्ति को पैदा करने वाली है, ये भक्त बनाने वाली है। वो तिथि ही विशेष रूप से ऐसी वरदायक है कि अगर उस तिथि का नियम के साथ थोड़ा सा पालन कर लिया जाए, वो तिथि के पालन करने से उसके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। वो कह रहे हैं तिथि का अपमान हो जाएगा, मैं कैसे इसका अवहेलना कर सकता हूं, मुझे इसको समय पर परायण करना पड़ेगा। और उन्होंने जल भी नहीं लिया था, निर्जल व्रत करते थे, राजा होकर के निर्जल व्रत कर रहे। तो मंत्रियों का उन्होंने सभा बुलाया, भाई क्या करें, दुर्वासा ऋषि तो अभी तक पहुंचे नहीं। महाराज सब अपने अपने मत दे रहे हैं, उन्होंने कहा मैं थोड़ा जल ले लूं क्या? हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, जल किसी अन्न में भी नहीं आता, आहार में भी नहीं आता, और आपका व्रत का पारायण भी हो जाएगा, आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। उन्होंने भगवान का थोड़ा चरणामृत पान कर लिया। अतुर्वसा ऋषि योगी हैं, उन्होंने स्नान करते हुए वहां देख लिया, ओ इसने तो मेरे को आमंत्रित किया और मेरे से पहले ही खा लिया, ये कैसा धूर्त है, राजा बन करके बैठा हुआ है, इसके द्वारा तो प्रजा भी धूर्त हो जाएगी। साधारण से साधारण संसार में आदमी जानता है कि भाई ब्राह्मण को बुलाया है तो कम से कम बच्चों को भी डांट फटकर, ए बच्चों अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले पंडित जी को खाने दो। और पंडित जी चार जगह आमंत्रण रहता है उनका, और बोल के रखते हैं कि भाई आएंगे हम जरूर, हम बेचारे यहाँ बच्चे तड़पते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग संयम का पालन करते हैं, छोटे नहीं तो कम से कम बड़े तो करते ही करते हैं। बोले ये राजा होकर के इतना भ्रष्ट हो गया, मैं देखता हूँ इसको एकदम निकले वहां से, स्नान करते हुए बाल भी नहीं पहुंचे उन्होंने, और जाकर के सीधा दरवाजे पर जाकर के दहाड़ मारा, धूर्त राजन तुम्हारा ये दुस्साहस, मेरा अपमान किया है, और महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े, महाराज मैंने कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, तुमने बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरे सम्मान के तुमने जल ग्रहण कर लिया। चाहते तो एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, और राजा हैं, शासक हैं, दंडाधिकारी वो हैं, दुर्वासा ऋषि नहीं है, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने सोचा इस राजा को उचित दंड मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने बालों से एक बाल निकाला, इसे उखाड़ा और सीधा धरती पर दे मारा। परिणाम ये हुआ, नीचे देख रहे हो आप, नीचे जमीन में से एकदम फुहारा जैसा निकल रहा है अग्नि का, जमीन में जैसे ही मारा धरती फाड़ करके एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, जो आग से बनी हुई थी, अग्नि रूपा, और इतनी भीषण आग उगल, बोले भस्म कर दो इसको अभी यहीं। और जब भस्म करने के लिए जब आगे बढ़ी, महाराज परीक्षित चुपचाप खड़े, महाराज अम्बरीश ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े, कोई भय नहीं, ये भक्त होता है, वो जानता है मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण, जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। इसलिए कृष्ण का वचन है, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। राक्षसी प्रकट हुई, महाराज अम्बरीश चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े, कोई भय नहीं है मृत्यु का। भक्त होता है ना, वो जानता है कि मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं ना, और आत्मा हूं तो आत्मा तो मरती नहीं, तो डरने का क्या कारण, इस कंसेप्ट को जानता है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते आत्मा का हनन नहीं हो सकता, हन्यमाने शरीरे शरीर का नाश निश्चित है, इसको कितना भी बचा के रख लो तो भी बचा नहीं पाओगे। इसलिए वो जानते हैं मैं आत्मा हूं तो मरने का क्या चिंता करना है, तो उनको डर ही नहीं बिल्कुल, बिंदास हाथ जोड़ के खड़े। लेकिन उनके शरीर की भी रक्षा करने के लिए भगवान ने जिम्मा ले रखा है। और इतनी देर में क्या हुआ, सुदर्शन प्रकट हो गए, सुदर्शन भी अग्नि रूपा प्रकट हो गए बनकर, और सुदर्शन चक्र ने इमीडिएटली कृत्या को तो भस्म कर ही दिया, वहीं का वहीं अग्नि से अग्नि को खा गए। कैसी भीषण अग्नि होगी सुदर्शन, ये भक्तों के रक्षक हैं सुदर्शन चक्र, उन्होंने कृत्या को तो खाई गए और चल पड़े दुर्वासा ऋषि के पीछे, तुम्हारी ये मजाल, दुर्वासा ऋषि आंखों के सामने देख रहे मेरी कृत्या को तो नाश कर दिया इन्होंने, असंभव को संभव कर दिया, अग्नि को बुझाया जा सकता है पानी से, लेकिन पानी की वजह यहां तो दूसरी आग से ही आग खत्म हो गई, और ये मेरी ओर आ रहे हैं। तुरंत एकदम से घबरा करके गिर पड़े पीछे की ओर,
और महाराज अम्बरीश एक इंच नहीं हिले थे और ये श्रीमान जी लुढ़कने लग गए, भागे। जब ये आगे भागे तो सुदर्शन जी पीछे पीछे, तो सुदर्शन जी तड़फा तड़फा करके किसी को कष्ट देते, तो एकदम से नजदीक भी नहीं जा रहे हैं, दूर भी नहीं, पीठ को बराबर तपा रहे, जल रही है पीठ इनकी। फोटो है क्या इसमें, आगे देखो, नहीं है, रहने दो पहले ही, चलो। वो भक्त ने फोटो डाले नहीं, और भी फोटोज हैं। खैर, तो पीछे पीछे जब सुदर्शन जी भागे तो सोचा कि अब कहाँ जाऊं भाई, ये मथुरा की घटना है। अब भागे वहां से, सोचे इंद्रदेव शायद रक्षा कर, इंद्र लोग पहुंचे। देवराज इंद्र कहे, महाराज ये पूरा मेरा इंद्र लोग जल जाएगा, भागो आप यहां से जल्दी से। भागना पड़ा उनको, कैलाश पर्वत चले गए। बोले यहां बहुत ठंडा है, बर्फ पड़ती है, उधर थोड़ी शांति मिलेगी। शिवजी बोले, भैया तुम मेरे ही अवतार हो, लेकिन मैं रक्षा नहीं कर सकता, आपने बहुत बड़ा भूल कर दिया है, आप भक्त की शक्ति को नहीं जानते, आप जल्दी से दफा हो जाओ यहां से, सारी बर्फ पिघल जाएगी, नीचे बाढ़ आ जाएगी, मेरे को भी स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा, आप जल्दी भागो यहां से। वहां से भी भागना पड़ा, अंत में ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, आप तो ब्राह्मण के स्रोत हैं, आप ही से तो ब्राह्मण आते हैं, आप तो हम सबके पिता हैं। बोले, महाराज ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, आपसे मेरे पास वार्ता करने के लिए भी टाइम नहीं, आप जल्दी निकल जाइए। जैसे कई बार भिखारी आता है ना, तो उसके साथ बातचीत भी लोग करना पसंद नहीं करते, इशारा कर देते, आगे बढ़ो, ऐसे कहना पड़ा, आगे बढ़ो। क्या स्थिति हो रही है, और आगे बढ़े, इतनी ताकत थी कि वैकुंठ चले गए। वैकुंठ में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन इतने बड़े योगी हैं कि वैकुंठ चले गए, और वैकुंठ में जाकर के भगवान के सामने बोले, हे जनार्दन, हे आर्त भावे, आपकी शरण में तो आर्त भी आता है, वो भी आप उसका वचन देते हो, आप उसे भक्त मानते हो, आप तो नमो ब्राह्मण गौ ब्राह्मण हिताय च, आप तो ब्राह्मण और गाय के हित करने वाले हैं। देखो ना, मैं ब्राह्मण हूं, तपस्वी हूं, और शरणागत हूं। आप शरणागत में तो सारे संसार को मारने वाला भी आपकी शरण में आ जाता है, तो आप उसको बाहर नहीं निकालते, आपको मेरे को अपनी शरण में लेना पड़ेगा। आप पतित पावन हैं, आप पतित से पतित व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं, आपका व्रत है, और आपका व्रत कभी झूठा नहीं हो सकता, और आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। शिवजी ने भी कहा है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, इसलिए आप मुझे निराश मत करना, आपके अतिरिक्त और मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। इतना सुनते ही भगवान ने सीधा अपना पक्ष क्लियर किया। सबसे पहले भगवान ने अपने बारे में बताया, बोले आपने गलत समझ लिया है कहीं से कि मैं स्वराट हूं, आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो। बताने नौवें स्कंद के चौथे अध्याय के 63वें श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, बोलो श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं, पहले ही सीधा घोषणा कर दे रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुर भीर ग्रस्त हृदयो
भक्तैर भक्त जना प्रिया।
द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हैड सेड टू द ब्राह्मण,
कौन ब्राह्मण थे?
दुर्गा ऋषि। अरे द्विज, हे द्विजन्मा ब्राह्मण, आई एम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माई डिवोटीज। अहम भक्त पराधीनो, मैं संसार के लिए अजीत हूं, मैं स्वराट हूं, लेकिन अपने भक्तों के लिए पराधीन। सीधा घोषणा कर दिया, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा भूमिका बनाया हो, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हो, कुछ नहीं। तुम कहीं जल ना जाओ जल्दी से, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र। कौन कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं? मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं, मैं अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं। और मेरी स्थिति क्या है? तुमको लगता होगा कि मैं अपनी इच्छा से उनके पराधीन हुआ हूं? बोले नहीं। कोई व्यक्ति दुनिया में पराधीन होना चाहता है क्या? भगवान कैसे चाहेगा पराधीन होना? शास्त्र कहता है, कहावत है, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में तो सुख मिलता ही नहीं, तो कौन पराधीनता चाहेगा? भगवान कह रहे हैं ये मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? साधुर भीर ग्रस्त हृदयो, उनके हृदय में जो साधु हैं, कौन है जो साधु हैं, उनके हृदय में मुझे ग्रसित होना पड़ता है। उनका हृदय मुझे पकड़ करके बांध देता है, ग्रसित कर देता है, खा जाता है, अंदर पकड़ के बैठ जाता है। मैं चाहता हूं भागना, लेकिन उनका हृदय ऐसा है कि मैं निकल नहीं पाता, चेकमेट हो जाता हूं। मेरे पास मुंह खत्म, रास्ते नहीं मेरे पास। इसलिए तुम बहुत गलत जगह पे आ गए।
और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा होगी जब पराधीन हो जाऊंगा, इच्छा नहीं होगी तब स्वतंत्र हो जाऊंगा। आप तो सुराट हैं, आपकी मौज है जब इच्छा हो जाए तब भक्तों के अधीन हो जाने का, जब मौज हो जाए तब भक्तों के ऊपर चढ़ जाने का। नहीं, अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र एव द्विज। मैं अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये भाव देते हैं अपने हृदय में।
कौन भान देते हैं? साधु। कौन भान देते हैं? साधु होने चाहिए, लेकिन वो स्वाधु नहीं
होने चाहिए। कैसे
साधु? साधु कौन हो सकता है? पुरुष भी, नपुंसक भी, स्त्री भी, बंदर भी, भालू भी, हाथी भी, वृक्ष भी, कोई भी साधु हो सकता है।
हनुमान जी वानर जाति में है कि नहीं? जामवन जी भालू जाति में है कि नहीं? ऐसे कितने सारे लोग हैं सुग्रीव आदि, सभी पशु पक्षियों की योनियों में है। जटायु आदि पक्षी हैं, गरुड़ जी पक्षी हैं, लेकिन कौन है?
साधु है।
साधु कोई भी बन सकता है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी साधु बनने की इस मनुष्य शरीर में है, बाकी शरीरों में इतनी नहीं है जितनी इस मनुष्य शरीर में। मीरा भाई साधु है, गोपियां साधु है। साधुर भीर ग्रस्त हृदयो भक्तै, और इससे भी बढ़कर, अरे ब्राह्मण तुम कहां फंस गए? और एक रहस्य जान लो। बोले क्या? बोले भक्तैर भक्त जनप्रिया, जो भक्तों के भक्त जन हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मुझे तो वो भी प्यारे हैं। जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मैं तो उनके साथ भी मेरी यही स्थिति है। ये देखो भगवान कैसे दया में है। क्या शक्ति है भक्ति की? जिसके पास भक्ति है उसकी क्या पावर है? ही कैन कंट्रोल दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हु इज द क्रिएटर ऑफ द कॉस्मोस, हु इज द मेंटेनर ऑफ द कॉस्मोस,
हु इज द इनहेलेटर ऑफ द कॉस्मोस, जो सारी सृष्टि का सृजन करता, पालन करता, संहार करता, उसको बांध देता है और उसको बंधना पड़ता है। भक्ति की शक्ति। इतना ही नहीं, और आगे क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं, ना हम आत्मानम आशा से मदभक्तै साधुर्भिर् विना श्रियं च अत्यंत किं ब्रह्मन् येषां गतिर् अहं परा। 64वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवता, तुमको पता है मैं इन भक्तों से कितना प्यार करता हूं। बोले ना हम आत्मानम आशा से, मैं अपने आप से भी आशा नहीं करता। अर्थात ऐसा नहीं कि प्रेजर्वेशन ऑफ द वन सेल्फ इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का एक फॉर्मूला है, नहीं, मैं अपने आप को भी सामने नहीं रखता। मैंने सुदर्शन को कह दिया है कि मेरी चारों भुजाएं अगर कभी मेरे भक्त के ऊपर अगर उठ जाए, मेरी भुजाओं के काटने के लिए आदेश मत स्वीकार करने का इंतजार करना, काट देना मेरी खुद की भुजाओं को। मैं अपनी भी आशा नहीं करता मेरे भक्तों के सामने कि मैंने खुद खाया है कि नहीं खाया है, मेरे भक्त ने खाना चाहिए। ना हम आत्मानम आशा से मद भक्तई साधुर भीर बिना, मैं खुद में भी खुशी अनुभव नहीं करता बिना भक्तों की, मुझे तो भक्त अत्यंत प्रिय है। और क्या कह रहे हैं, कोई सोचता होगा लक्ष्मी नारायण बनकर के लक्ष्मी जी के साथ आराम से अपने वैकुंठ में निवास करते हैं। बोले नहीं, श्रियम, ऐसी श्री जो लक्ष्मी है, जो महासती है, श्रियम च अत्यंत किम, मैं उनकी भी परवाह नहीं करता, उनको भी त्याग देता हूं। लक्ष्मी को भी मैं छोड़ देता हूं, किसके लिए, भक्तों के लिए। लेकिन कौन से भक्त, ये शाम जिनकी गति पराम मेरे में है, जो मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणा, विदाउट सेंटली पर्सन फॉर होम I am the only destination. I do not desire to enjoy my transcendental bliss, which is called Lakshmi and my supreme opulences. मैं अपना आनंद भी भूल जाता हूं और opulences के रूप में लक्ष्मी को भी त्याग देता हूं। मैं इतना प्रेम करता हूं भक्तों को। और क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, और आगे कह रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति कहेगा हम तो भगवान की गति को लेकर के जी रहे हैं, हम तो रात दिन भजन करते, हर व्यक्ति कहता है ऐसा। लेकिन भगवान आगे कह रहे हैं, इन भक्तों की पहचान क्या है वो भी सुन लो। ये भक्त कैसे होते हैं, मैं कैसा होता हूं ये तो बता दिया, अभी मेरे भक्त कैसे होते वो बता रहे हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तां त्यक्त्वम उत्सहे। बोले मेरे भक्त की परम गति कैसी होती है, बोले ये दारागार पुत्राप्ता, जो अपनी पत्नी, दारा मतलब पत्नी, पुत्र माने संतान, बेटा बेटी, आगार माने मकान दुकान, ये दारागार पुत्राप्तान इवन प्राणान, प्राणों के भी परवाह नहीं करते। महाराज अम्बरीश प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं क्या, प्राण बचाने के लिए भागे नहीं, विश्वास। क्या प्रहलाद महाराज प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, कोई प्राणों के लिए नहीं, के खाएंगे कहां से, पहनेंगे कहाँ से, कहाँ से पैसा आएगा, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे ही संत थे जो पैनी लेस होकर के अमेरिका अपने गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए चले गए। तो भगवान ने कोई चीज की कमी की नहीं, पत्नी पुत्र आप तो मकान दुकान सब छोड़ करके चले। वो परम भक्त है, कैसा है, परम भक्त है। रामायण में भी कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता तांग बटोरी, सब कर ममता तांग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, मम पद ही बांध बट डोरी। जननी माने माँ, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने बेटा बेटी, दारा माने पत्नी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन माने शरीर, धन माने पैसा बैंक बैलेंस, भवन माने मकान दुकान, सुहृद माने शुभचिंतक लोग, परिवारी मतलब परिवार के जन, सब कर ममता, सबसे ममता खींच लो और उस ममता को खींच करके एक बड़ा सा रस्सा बनाओ, जो बटी हुई रस्सियां हैं सब तरफ से खींच के बड़ा सा रस्सा बनाओ, मम पद मन ही उसको मेरे चरणों से बांधो, तुम्हारे मन को वो मेरा ऐसा भक्त है। हित्वा माम, जिसने इन सबको छोड़ करके चल रहा है, बोले उसको शरण में आए हुए ऐसे, शरणम याता, जो मेरी शरण लेता है, कथम मैं कैसा व्यक्तित्व कहलाऊंगा कि अगर मैं ऐसे लोगों को त्यागने में उत्साह दिखाऊंगा, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, जिन्होंने ये सब त्याग किया हो मैं उन भक्तों को कभी त्यागने में उत्साह दिखा सकता हूं। बोले चलते बनो यहां से, तुम ब्राह्मण हो मैं अपना वचन वापस लेता हूं, तुम तपस्वी हो मैं अपना वचन वापस लेता हूं, तुम शरणागत हो मुझे नहीं चाहिए ऐसे शरणागत। बोले कोई उपाय, बोले वही जाओ मेरा भक्त अम्बरीश, वो तुम्हें क्षमा कर देगा। और तुम्हें पता है इतना तुम घूमते घामते यहाँ पर आए हो धरती लोक पे, तो एक साल निकल गया है, और बेचारे अम्बरीश जिनको तुमने मारने के लिए कृत्या प्रकट की थी, वो भक्त अभी तक प्रसाद नहीं खाया उसने, अभी तक उसने प्रसाद नहीं खाया। हम होते तो कहते देखा कैसे पंगा लिया था तुमने सुदर्शन जी, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो। भक्त तो ऐसे होते हैं जो बिना गलती के भी अपनी ही गलती मानते हैं और अपनी ओर से क्षमा मांगते हैं। क्या हुआ आगे बता रहे, मेरे भक्त कैसे होते हैं, बोले मई निर्बद्ध हृदया, जिन्होंने मुझे अपने हृदय में निर्बद्ध चारों तरफ से बांध लिया है, साधवा ऐसे साधु जो समदर्शिना जो समदर्शी हैं, वशी कुर्वंती माम भक्त्या, ये मुझे बिल्कुल वश में कर लेते हैं। कैसा वश में करते पता है, सत स्त्रिया सत पतिम यथा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक सती स्त्री सत्य पति को वश में कर लेती, जो सती स्त्री नहीं, जो सत्य स्त्री नहीं, जो असत्य स्त्री है, जो भोग वाली स्त्री है, जो भोग कामना रखने वाली स्त्री है,
वो सत्य पति को कैसे वश में करेगी, वो असत पति को वश में कर सकती है।
सत स्त्री जो सती स्त्री है, तीन प्रकार की रति पाई जाती है, तीन प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक भोग परायण स्त्री होती है जो केवल इंद्रिय सुख चाहती है, ऐसी रति वाली स्त्रियों को पशु की कैटेगरी में रखा जाता है जो केवल इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं बस। और इससे श्रेष्ठ मनुरति आती है जिसमें भोग भी रहता है और गुण भी देखे जाते हैं। इंद्रिय भोग जहां देखा जाता है केवल वो पशु के अंतर्गत आती हैं वो स्त्रियां या वो पुरुष, जहां भोग भी है और गुण भी है वो मनुरति के अंतर्गत आती हैं, उनको मनुष्य शरीर के अंतर्गत माना जाता है। और गुण रति को ही देव रति भी कहते हैं, जहां देवलोक में जहां केवल गुण ही गुण देखे जाते हैं वहां भोग की वृत्ति नहीं पाई जाती। इसलिए एक सती स्त्री जो केवल क्वालिटीज देखती है उससे भोग संभव ही नहीं, लेकिन वो सतपति के साथ ही संभव हो सकता है, वो भी केवल क्वालिटीज देखेगा और गुणों से ही वश में किया जा सकता है, भोगों से संभव नहीं वश में किया जाना, कोई किसी को वश में नहीं कर सकता। इसलिए आए दिन आजकल डाइवर्स हो जाते हैं, पहले निभाते थे लोग, आजकल वो वृत्ति नहीं रही क्योंकि पहले गुण देखे जाते थे, समाज पतन की ओर जा रहा है धीरे धीरे। तो भगवान कह रहे हैं सत स्त्रिया सत पतिम, तथा जैसे एक सती स्त्री सतपति को अपने गुणों के द्वारा वश में कर लेती है, ऐसे ही बोले मैं वश में हो जाता हूं, भोग परायण स्त्री भोगी पति को वश में कर लेती है, सती स्त्री सतपति को वश में कर लेती है। भगवान सतपति की तरह है कि नहीं, भगवान सतपति सत्य संकल्प है, पवित्रम परमम भवान, उनसे श्रेष्ठ पवित्र और कोई है नहीं। बोले मैं मई निर्बद्ध हृदया साधवाह, ऐसे साधु लोगों के मेरा हृदय, मैं उनके हृदय में निर्बद्ध हो जाता हूँ, बंद जाता हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं निकलने को मिलता, इसलिए तुम वही जाओ वापस। कितना सुंदर उदाहरण भगवान दे, आगे बढ़ो। बोले आप वहीं जाओ, पहले वाली स्लाइड पर लेके चलो, आप यहां देखो, हाँ वही वाला पहले वाला, अभी जो फोटो आया था, हाँ ये वही फोटो, हाँ इसमें देख रहे हैं आप, वही साधु अभी महाराज अम्बरीश के चरणों में चरण पकड़ करके गिर पड़े हैं, मर्दा सब भूल गए हेकड़ी। जैसे कई बार आदमी गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भूल जाता है ना, भूल गए राग रंग भूल गए हेकड़ी, तीन चीज याद रही नॉन तेल लाकड़ी, सिलेंडर क्या भाव है, तेल क्या भाव चल रहा है, नमक क्या भाव चल रहा है, सब हेकड़ी निकल जाती है। यहाँ श्रीमान जी के साथ सुदर्शन जी ने सारी हेकड़ी निकाल दी, सारी बड़ी बड़ी जटाएं जिनसे एक एक बाल से कृत्या प्रकट कर सकते थे, धरती फाड़ सकते थे, अभी उनको धरती नहीं मिल रही कि मैं काम हो चुका हूं। और भागते 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 अंत में अम्बरीश महाराज के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने। अम्बरीश महाराज चरणों को पकड़ाने में अनुभव खुशी का नहीं अनुभव कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन जी से, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुदर्शन अगर मैंने थोड़ी सी भी भक्ति की है, तिल मात्र भी अगर मैंने सच्ची भक्ति की है, आप कृपा करके शीतल हो जाए। ये किसकी शक्ति है, भक्ति की शक्ति, ये भक्ति ही शक्ति है और शक्ति ही भक्ति है। दुनिया में जो भी शक्ति आप देख रहे हैं वो सब भक्ति के अंश मात्र शक्ति स्वरूप में सारे संसार का भरण पोषण, बिना भक्ति की कुछ नहीं। आपको पता है भागवत में प्रथु महाराज कहते हैं चार कुमारों को कि कई बार, और प्रथु महाराज जिनके नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, जिनका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, राजा बने और उन्होंने इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया, तब से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। वो पृथ्वी के मालिक हैं। उनके यहाँ चार कुमार आए, भगवान के भक्त सनक, सनातन, सनत और सनंदन। वो कह रहे हैं, मैं आपको, आप मेरे घर में आए हो, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, क्या दे सकता हूं, ये सारा संसार तो आपका त्यागा हुआ उच्चिष्ट है। क्या है? उच्चिष्ट है। मैं आपको क्या दूं, थूक है आपका ये सारा संसार। वो कह रहे हैं, आपकी भक्ति से ये सारा संसार पालित पोषित हो रहा है। आप जो भजन कर रहे हो उसके कारण कृष्ण प्रसन्न होकर के हम सब लोगों को भी उस छत्र छाया में रहने के कारण फायदा मिल रहा है। एक बार 5 लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए, महाभारत की घटना है ये, तो एक घास खोदने वाला भक्त तो एक जगह रुके रास्ते में, बार बार जहां रुके वहां झोंपड़ी पर बार बार बिजली गिरती थी नजदीक आके और लौट जाती थी, बार बार गिरे लौट जाए। कोई कहे, हम में से कोई ऐसा है जो पापी जिसके लिए बोले बिजली आ रही है लेकिन बाकी लोगों के कारण बिजली गिर नहीं रही है? एक एक को बाहर किया जाए, जो पापी होगा वो बाहर मर जाएगा, बाकी तो बच जाएंगे। एक व्यक्ति गया, बड़ा सेठ, बाहर गया, डर डर के गया बेचारा, नहीं गिरी फिर भी बिजली बार बार झोपड़ी पे आ रही है और जा रही है। वो वापस आए, देख लो भाई तुम लोगों में से कोई है, मैं तो नहीं मरा। बाकी एक गया, दूसरा वो भी बाहर गया तो फिर भी झोपड़ी पे है, या बाहर ना गिरे तो वापस आ गया। थैंक गॉड मेरा भी नंबर नहीं लगा। तीसरा व्यक्ति गया, अब ये सब अपना दान धर्म थोड़ा बहुत करते चल रहे थे यात्रा के दौरान। वो घास खोदने वाला एक व्यक्ति गरीब, उसने अपना छोटा सा खुरपा बेच करके किसी साधु को दान कर दिया, खुरपा ही था जिससे वो घास काटता था। बोले ये क्या दान किया इसने। फिर आखिरी में वही बचा, बस बोले तेरी वजह से ही हम मरते मरते बच रहे, तू बाहर जा, तेरी तो कोई अहमियत ही नहीं। जैसे ही वो बाहर निकला झोपड़ी पे बिजली गिरी, चारों के चारों खत्म। बाद में पता चला उसके पास बेचारा जो भक्ति था, एक भक्त की सुकृति के कारण बाकी सारे लोग बच रहे थे। लेकिन सोच क्या रहे हैं ये लोग, हमारे कारण ये बच रहा है। वास्तविकता ये, पृथु महाराज कह रहे हैं आपके कारण सारे संसार का भरण पोषण हो रहा है। आप भक्ति करते हो, आप संकीर्तन करते हो, आप यज्ञ करते हो, इसलिए संसार में समय पर बरसात होती है, समय पर सीजन चेंज हो रहे हैं, धरती में उपजाऊ शक्ति बनी हुई है, सारा संसार चलायमान है। और हम तथाकथित सेठ लोग सोचते हैं हम मंदिर में जाकर के मंथली नित्य सेवकों की लाइन में अपना नाम लिखवा करके आए हैं, हर महीने हम मंदिर में इतना सेवा देते हैं इसलिए मंदिर चल रहा है। ये भूल रहे कि झोंपड़ी से निकलने दो बस। ये टकले लोग, मोगेम्बो खुश हुआ, ये अगर निकल जाएंगे ना हालत खराब हो जाएगी। हम जानते हैं, कल हम रोड पर कीर्तन कर रहे थे, इसी रोड के आसपास वहां सिग्नल था, एक व्यक्ति आया, हु इज द फॉलोअर ऑफ कृष्णा, हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन। बोली यू आर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस हियर। क्या नॉनसेंस कर रहे हैं भाई, गीता वितरण कर रहे हैं, थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस वी आर डूइंग हियर। बोले यू डू, इफ यू वांट टू डू हियर डू इट इन अ वेरी जेंटल वे। किसी को मारपीट की जबरदस्ती गीता था मारे क्या? नो, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ दिस नॉइज।
यू फूल कैन यू स्टॉप द ऑल दीज व्हीकल्स हु आर हॉन्किंग द हॉर्न ऑन एवरी सेकेंड कैन यू स्टॉप और दे आर क्लेमिंग लाइक एनीथिंग. लेकिन भक्त ऐसे होते हैं जो गलती नहीं है फिर भी मैंने कहा क्षमा कर दीजिए महाराज हम जा रहे हैं चले आए. हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे हो जाते कि सुबह में आप 4:30 बजे कीर्तन में माइक मत बजाया करो बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है. और मैं कई बार सोता हूँ तो रात भर कुत्ते भौंकते हैं माइक को बीट करते हैं जोरदार. भगवान कहते हैं बेटा तेरे को अगर भक्तों का कीर्तन बुरा लगता है चल मैंने कुत्ते छोड़ रखे थे भगवान सुधार देते हैं अच्छी तरह से. लेकिन फिर भी भक्त लोगों को एक मौका देते हैं कि ठीक है भक्त लोग क्षमा करते रहते हैं. हंसने की बातें तो हैं लेकिन साथ में बड़ी गंभीर विचारने की भी बातें हैं. हमें अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंथली सेवक हैं हमने संडे प्रोग्राम में फीस्ट स्पॉन्सर किया इसलिए मेरी वजह से सब खा पाए. अरे क्या तुम एक घास का तिनका बना सकते हो ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भक्त लोग तुमको सौभाग्य दे रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम इस प्रकार से भगवान की पार्शियली सेवा कर सकते हो 100% तो तुम जीवन क्या समर्पित करोगे तुम क्या दार को समर्पित करोगे दार आगार कौन सा मकान तुम देने वाले हो कौन सा तुम वित्त अपना धन दौलत देने वाले हो कौन सा तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है तुम सब संसार में आसक्ति के साथ भरे पड़े हो आंशिक रूप से धीरे धीरे अपने आप को उठा सकते हो. दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू विच इज गिवन बाय द डिवोटीज ऑफ कृष्ण टू यू अन्यथा तुम्हारे इस धन की क्या ताकत उसको तो लात मार के भक्त लोग पहले ही आते हैं. तुम्हारी प्राणों की क्या ताकत किसी की कोई ताकत नहीं. भक्तों के पास तो एक ताकत होती है वो कौन सी है भक्ति की शक्ति है. दिस इज द पावर ऑफ डिवोटी. व्हाट कैन ही नॉट डू ही कैन डू इवन दैट विच कैन नॉट डू इवन कृष्णा हिमसेल्फ दैट इज द पावर ऑफ डिवोटी. जिस दुर्वासा ऋषि की जान स्वयं भगवान नहीं बचा सकते शिव नहीं बचा सकते